તારીખ 19/7/1995 શ્રી મદ્રાજચંદ્ર પત્રાંક 609 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 135.
પર ભાન રહેતા ઉસી કે અનુસાર હમારી વર્તના રહેતી હૈ. હમારા જો વર્તન કી ક્રિયા હૈ, તો હમ મનુષ્ય ઉચિત વ્યવહાર કરતે હૈ, ત્રિયેશ કે ઉચિત વ્યવહાર, નારકે કે ઉચિત વ્યવહાર નહીં કરતે, તો કે હમ ભાન મેં હૈ કે હમ મનુષ્ય હૈ. वैसे सहज स्वरूप का अगर भान हो गया तो हमारी वर्तना ऐसी ही हो जाया करेगी सहज रूप से. तो हमारा जो स्वरूप है वो बंद मोक्ष से रहित है, तो ऐसी हमारी वर्तना चालू हो जाएगी, ऐसा परिणमन चालू हो जाएगा. भान होने से सर्व गुणांश यह सम्यक हो, कृपालु देव ने सम्यक दर्शन की गुण प्रधान परिभाषा कही है. सम्यक दर्शन की श्रद्धा प्रधान, ज्ञान प्रधान, चारित्र प्रधान, पुरुषार्थ प्रधान, सुख प्रधान, सब परिभाषा होती है. द्रव्य प्रधान, गुण प्रधान, पर्याय प्रधान ये भी हो सकती है. इसमें ये गुण प्रधान परिभाषा है. सर्व गुणांश वो सम्यक, जिस सम्यक उत्पन्न होने से, इस संकित के कारण से जीव के सर्वगुण के अंश शुद्धत्व रूप परिणमन करने लग जाते हैं. क्योंकि द्रव्य का पूरा द्रव्य का एक अंश शुद्ध हो गया तो सर्वगुण का अंश भी शुद्ध हो ही जाता है. ऐसी शुद्धि प्रारंभ में सर्वगुणों की चालू हो जाती है और भान रहता है कि मैं परिपूर्ण शुद्ध हूं. ऐसे भान में वो आगे बढ़ता है और उसको मोक्ष कहने में आता है या सहज स्वरूप से स्थिति है ऐसा कहने में आता है. ये श्रद्धा प्रधान मोक्ष की परिभाषा है. और ऐसा भान कैसे नहीं हुआ और ऐसा भान कैसे होता है वो निम्न वचनामृत में वो दर्शाते हैं. इस संघ के योग से यह जीव सहज स्थिति को भूला है. जैसा जैसा संघ में गया वैसा वैसा रंग चढ़ा परिणमन में. मन गुजराती में तो एक पद आते थे पहले, जैने जेवो संग रंग तेरते वो थे बैसे. इसलिए ज्ञानियों ने सत्संग की शिक्षा दी है. कुसंग में जाएगा तो ऐसा परिणमन हो जाएगा, असत्संग में जाएगा तो वैसा परिणमन हो जाएगा, सत्संग में जाएगा तो वैसा परिणमन हो जाएगा. और वो प्रत्येक सबको अनुभव उत्तर होता ही है. तो कहते हैं कि पुद्गल का संग है जीव को, किसका संग है, पुद्गल का संग है. कर्म और नो कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म उसके बहुत समीप है, इसलिए उसका संग कहते हैं. और ये नो कर्म रूप संयोग में अपनापन करके, कर्तृत्व करके, भोक्तृत्व करके जीव अपना सहज स्वरूप को भुला हुआ है, अनादि से भुला हुआ है. मेरा स्वरूप कैसा है वो जानता भी नहीं है और उसका भान भी नहीं है. कभी परलक्षी ज्ञान में जान लेता है तो भान नहीं होता. यदि स्वलक्ष्य ज्ञान में जानेगा तो भान होने का अवश्य होगा. लेकिन जी जब तक शास्त्र परलक्ष्य से पढ़ता है अपने आत्मा को मुख्य करके शास्त्र की पढ़ाई नहीं करता है, दूसरे दूसरे के सामने देख करके पढ़ता है, वहां तक अपने को नुकसान होता है, लाभ कभी नहीं होता। संघ के योग से यह जीव सहज स्थिति को, मैंने सहज स्वरूप को भुला हुआ है, और संघ की निवृत्ति से सहज स्वरूप का अपरोक्ष भान प्रकट होता है, प्रकटता है। इस संघ की भाव में निवृत्ति कर दे, नाश कर दे, संपर्क छोड़ दे भाव से, तो सहज स्वरूप का अपरोक्ष माने प्रत्यक्ष भान प्रकट होता है। संघ की निवृत्ति माने क्या? क्या उद्गल पदार्थ का संयोग को छोड़ दे? ये शरीर है वो उद्गल है, आयुष्य पर्यंत संग में रहने वाला है, किसी भी प्रकार का उपाय करे छूटने वाला नहीं है, सारी जिंदगी बीमार रहे तो भी आयुष्य तो भोगना ही पड़ता है, पर बिना बीमारी भी आयुष्य पूरा होता है तो बात खत्म होती है, खेल खत्म होता है। तो पर पदार्थ को त्याग करना, दूर करना वो जीव के अधिकार का विषय नहीं है, जीव के अधिकार का विषय नहीं है। एक सलीका दो टुकड़ा करने का अधिकार जीव का नहीं है, ये वस्तु स्थिति है। क्यों? कि पुद्गल तक जीव की पहुंच नहीं है और पुद्गल की जीव में पहुंच नहीं है, दोनों द्रव्य सर्वथा द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वच्छ चतुष्टय से भिन्न भिन्न है, कोई किसी का कार्य कर सकता नहीं है, ये एक वस्तु स्थिति है। तो फिर संघ की निवृत्ति कैसे करें? यहां तो संघ की निवृत्ति करने से भान होता है ऐसा कहा, संघ की निवृत्ति भाव से करो, ये शरीर मेरा नहीं, भिन्न अनुभव करो, और जितने भी संयोग प्रारब्ध के कारण से हैं, मकान पैसे आबरू कीर्ति कुटुंब परिवार, ये जितना भी संग है जीव को, उसमें अपना तो छोड़ दो, मेरे हैं ये बात छोड़ दो। कोई कहते हैं कि हमको दान कर दे तो त्याग किया कि नहीं किया? लेकिन मेरे पैसे का दान किया क्या होता है? दान तो दिया, पैसे भी दिया, लेकिन मेरा अपना रख करके दिया, तो दिया ही नहीं, सिद्धांत के अनुसार तो दिया ही नहीं है, क्योंकि मेरा अपन तो रख लिया, मेरा अधिकार था, बैंक अकाउंट में मेरी सिग्नेचर चलती है तब ये बैंक में चेक पास होता है, मेरे पोजीशन में है ये पैसे, मेरे पोजीशन में है, उस पर मेरा अधिकार है, इसलिए मैं देता हूं। अधिकार रख करके दिया तो दिया ही नहीं, ये बात है। क्रिया से तो दिया ऐसा दिखेंगे, लेकिन वितराग देव ना बोलते हैं कि नहीं नहीं उसने नहीं दिया है, उसने दिया ही नहीं, क्योंकि मेरा अपना तो रखा उसने। ये ट्रस्टों में जो भी तकरार होती है कहां से होती है? तो पैसा देने वाले उस पर अधिकार रखते हैं, ऐसा होना चाहिए, जब वहां पैसा देते हैं तो वहां ऐसा होना चाहिए, तो अपना अधिकार रखते हैं वो, अंग्रेजी में तो बहुत अच्छी परिभाषा है, पैसा देने वाले ट्रस्ट में पैसे देने वाले को क्या बोलता है, उपभोक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वो ट्रस्ट का उपभोग कर रहा है, तो उसको तो भोगने का चांस मिला है, तो उपकार किसका है, ट्रस्ट का है या पैसे देने वाले का है? बेनिफिशियर बोला जाता है अंग्रेजी में, क्या बोलता है इसको, लाभ उठाने वाला। बेनिफिट मैंने लाभ, लाभ उठाने वाला। तो लाभ उठाने वाला उपकारी है या जिसने लाभ उठाने का मौका दिया वो उपकारी है? कौन सा, कौन उपकारी है? अधिकार जमाता है बेनिफिशियर, हम तो ट्रस्ट का बेनिफिशियर है, हमारा वो अधिकार है। बहुत गड़बड़ चलती है यहाँ, तो कहते हैं कि निसंग की निवृत्ति क्या चीज है, कि मेरी चीज मेरे आत्मा के सिवा मेरी कोई चीज ही नहीं है, और ये वास्तविक परिस्थिति है। इस देह को भी छोड़ करके जाएगा ना आत्मा, और क्या चीज ले जाएगा? जब देह को भी छोड़ करके जाएगा तो और कौन सी चीज ले जाएगा? कोई चीज साथ में आने वाली नहीं है, तो कोई चीज इसकी है ही नहीं। वो बात तो वास्तविक है, ये हार्ड फैक्ट है।
फिर भी
ये भाव के वशात नहीं आता, ये दर्शन भाव का प्रभाव है जो सही परिस्थिति को देखने नहीं देता है, ये भ्रम पैदा करता है समझ में, भ्रमणा के कारण वो समझ में नहीं आता है। इसलिए पहले दर्शन मोह को मारो, दर्शन मोह को हटाओ, ये सबसे पहले जो करने योग्य कार्य वही है कि मोह से जो अपनत्व हो रहा है, इस मोह को हटाने से अपनत्व हटेगा तो संघ की निवृत्ति होगी। ऐसे तो विश्व में छह द्रव्य का संयोग रूप विश्व है, जैन दर्शन के अनुसार जीव, उद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, छह द्रव्य का संयोग है। एक सुई के पॉइंट जितना भी जगह खाली नहीं है कि वहां छह द्रव्य की उपस्थिति नहीं हो, छह द्रव्य का संयोग नहीं हो, ऐसी कोई खाली जगह नहीं है। सारे विश्व में छह द्रव्य भरचक भरा हुआ है, इसलिए फिजिकली कोई द्रव्य से कोई द्रव्य का निवृत्त होना यह संभव ही नहीं है। कि भी चलो संयोग छोड़ दो, या नहीं, तुम कहीं भी रहोगे पांच छह द्रव्य है, एक भी द्रव्य का अभाव नहीं है लोक में, तो पर अभाव हो ही नहीं सकता। इसलिए कोई किसी द्रव्य को हटा करके हम अकेले रह जाएंगे ऐसी कोई वस्तु स्थिति बनने वाली नहीं है। न आकाश हटेगा, न धर्मास्तिका हटेगा, न धर्मास्तिका हटेगा, न खालाणु हटेगा, न पुद्गल हटेगा, न दूसरे जीव भी हटेगा। हमारे जीव का क्षेत्र है, वहां भी बहुत से जीव है, और उस जगह पे बहुत से जीव है, तो एक क्षेत्रावगाही छह द्रव्य रहता है। शास्त्र परिभाषा में क्या कहते हैं, एक क्षेत्र में, और एक क्षेत्र में अवगाहन करके, अवगाहन करके मैंने कि अपने स्वरूप को छोड़े बिना एक साथ रह जाना, एक ही जगह पे रह जाना। आकाश की गोद में दूसरे पांच द्रव्य है, सबसे बड़ा आकाश है, इसलिए इसकी गोद में पूरा लोक है। तो कोई द्रव्य से कोई द्रव्य का बिल्कुल क्षेत्र से छुटा हो जाना ये तो संभव ही नहीं है। तो संघ, वैसे तो फिजिकली कोई संघ छुटा हो ही नहीं सकता, भाव से छुटा हो सकते हैं आप, कि मैं एक आत्मा हूं, सहज स्वरूपी हूं, और मेरे में किसी का सद्भाव नहीं है, मेरे में मेरा अस्तित्व है, दूसरा किसी का अस्तित्व मेरे में है ही नहीं, और ये वस्तु स्थिति है। ऐसा श्रद्धा ज्ञान आचरण करे उसको कहते हैं कि सहज स्वरूप का प्रत्यक्ष भान हो गया और उसी का नाम आराधना है, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। जोर से बोलिए।
श्रद्धा ज्ञान चारित्र का मतलब?
श्रद्धा ज्ञान चारित्र ऐसे श्रद्धा करना कि मैं सर्व पदार्थों से भिन्न सहज एक शुद्ध आत्मा हूं, ज्ञान में ऐसा अनुभव करना संवेदन पूर्वक, और ऐसा ज्ञान को स्वरूप में स्थिर करना, वितराग भाव से परिणमन करना, उसको कहते हैं चारित्र आचरण। पर वही मोक्ष का मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, और वही जन्म मरण का और संसार का नाश करने का एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। संघ के योग से, योग से मैंने खुद उसमें जुड़ान करता है, ज्वाइन इज योज टू ज्वाइन, संघ में खुद ही उपयोग लगाता है, अपनत्व करता है तो अपने स्वरूप को भूलता है। ऐसा योग का निवृत्ति होना, उपयोग नहीं लगाना, उपयोग अपने स्वरूप में लगाना, तो संघ का योग की निवृत्ति होगी। योग हुआ अपने में, और यही योग है, यही भक्ति का, अभेद भक्ति का प्रकार है, नियम सर्ग उसको अभेद भक्ति कहा है। स्वरूप में योग लगाना, योग योग मैंने उपयोग का जुड़ान कर देना, तो बाह्य संघ की निवृत्ति हो जाएगी उपयोग को, और सहज स्वरूप का प्रत्यक्ष भान प्रकट होगा। हाँ देखिए, हमारा उपयोग जहां लगता है, किस कारण से लगता है, हम तलाश करें। जहां जहां जिन जिन पदार्थ में हमारा उपयोग लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि हमें वहां सुख का निश्चय कर लिया है, सुख नहीं होने के बावजूद भी वही हमारा आधार है, सुख का आधार है, और सुख के कारण से हमें प्रेम है, आसक्ति है, तो हमारा उपयोग गए बिना रहता नहीं है, नहीं चाहे तो भी चला जाएगा, सहज चला जाएगा, क्योंकि हमने मान रखा है, निर्णय कर रखा है कि हमारा सुख का कारण है। जहां जिसका सुख का कारण होता है वहां उसका उपयोग लगा ही रहता है, बार बार लगता है। अब कहते हैं कि देख तेरा सुख का भंडार, सुख समुद्र तो तुम्हारा स्वरूप में है। भ्रम से सुख माना है, जाना है, तो उपयोग वहां जाता है। अब सही समझ करके स्वलक्ष्य ज्ञान में अपने में अपना सुख का, अनंत सुख का, अनंत सुख धाम का, निदान का प्रतिभास हो जाए, तो उपयोग स्वरूप के प्रति आसक्त हो जाएगा, उपयोग का खिंचाव अंतर में हो जाएगा, और उपयुक्त स्वरूप में स्थिर होकर के रहेगा। नेचरली, जैसे बाहर में सहज जाता है वैसे अंदर में भी सहज जाएगा, पर ऐसा मार्ग सहज ही है। हाँ, प्रतिभास की जो प्रक्रिया, उसमें तो सारी चेन है। प्रतिभास किसको होता है कि जीव को अपने वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान दशा में, वर्तमान पर्याय में जो ज्ञान का अंश खुला है वो स्वभाव अंश है, ये मूल स्वरूप का सैंपल है। जैसे सैंपल से पूरी चीज का पता लगता है, हम गुड़ खरीदने को जाते हैं तो 30 किलो का जो कोल्हापुरी गुड़ होता है, ढेला रवा, उसमें से चारानी बार दोआनी बार सैंपल को चख लेते हैं, तो पूरा गुड़ ऐसा है, ठीक है चलो। वैसे पूरा आत्मा, अखंड आत्मा, पूर्ण आत्मा, इसका सैंपल अपने ज्ञान में वेदन से अनुभव गोचर होता है। परमार्थ की स्पष्ट अनुभवान से प्रतीति आती है। 751 में जो दूसरा संकेत कहा है वो जीव स्वरूप का प्रतिभास है, जीव स्वरूप की पहचान है, यानी जीव स्वरूप का यथार्थ निश्चय है। तो पहचान कैसे होती है वो प्रश्न खड़ा हो जाएगा, पूरी चेन निर्माण से तो लागू होगी। आप कहेंगे कि अनुभव कैसे होता है, उपयोग कैसे अंदर में आता है, कि प्रतिभास के बिना आता नहीं, पहचान के बिना आता नहीं। पहचान है वो तो एड्रेस है, पता मिल गया तो आप पहुंच जाएगा। तो पहचान कैसे होती है कि परिचय के बिना किसी की पहचान होती नहीं, किसी की भी पहचान करो बिना परिचय पहचान होती नहीं। तो जीव का की पहचान करने के लिए जीव का परिचय होना आवश्यक है, ये सिद्धांत निकला। हम ये बात प्रश्न खड़ा हो जाएगा परिचय कैसे करना, ठीक। ये डिस्कनेक्टिंग क्रम है, नीचे 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 कैसे होता है काम। कार्य से कारण को खोजते हैं कि कार्य ऐसा है तो कारण कैसा है, बिना कारण कोई कार्य हो सकता नहीं है, ये पदार्थ का साइंस है, वस्तु का स्वरूप है। परिचय करने के लिए अपने परिणाम में जो भी भाव उठते हैं इसके अनुभव को देखो, अवलोकन करो, इसके अनुभव पर उपयोग को ले जाओ बार बार। यही प्रैक्टिस करने से परिचय होता है, ये प्रैक्टिकल साइड है इसकी। ये प्रैक्टिस सतत होनी जरूरी है। हाँ, देखते रहो परिचय हो जाएगा, अवलोकन करोगे तो परिचय हो जाएगा। जैसे जिसके सहवास में हम रहते हैं उसका परिचय होता है, हमारे यहाँ तो गुजराती में कहवत है, सोनू जुओ कसी अने मानस जुओ वसी। सोनानी परख करी हो तो वारंवार तुम्हारे कसोटी पर कसवू पड़े, अने कसता कसता कसोटी ऊपर घसता घसता सोनानी परख आवे। अने मानसनी परीक्षा करवी हो के परिचय करवो हो तो एनी साथे बसवू पड़े। अपन क्या करते हैं, लड़के का शादी करके बहू को ले आते हैं, इसके पहले इंटरव्यू ले जाता है, लेते हैं, एक लेते हैं, दो लेते हैं, चार लेते हैं, होशियार से होशियार आदमी इंटरव्यू लेते हैं। हाँ, क्या इंटरव्यू से पता चल जाता है क्या, आधा घंटा घंटा बात कर लिया है, या एक दो दिन लड़का घूम लिया, हो जाता है परिचय क्या? कोई भी प्रश्न पूछो जवाब सीधा मिलेगा, उल्टा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको आना है। उल्टा जवाब कैसे देगी? वो तो घर में आकर के देगी तो देगी बाद में, अभी तो सगाई करनी है, होने वाला नहीं। बिना परिचय ले आते हैं, फिर क्या होता है कि लाड़ी ने वाड़ी निबड़े वखाण, निबड़े खबर पड़े, निबड़े मैंने आगे कैसा होता है देखो। साथ में बसते हैं, एक घर में रहते हैं, तो फिर पता चलता है कि वो कैसी है। ऐसे नहीं पता, इंटरव्यू से किसी का पता नहीं चलता, पहचान नहीं होती है। इस तरह से परिचय से पहचान होती है, वही एक ही तरीका है पहचान होने का, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो अपने भावों का परिचय करो, बार बार अनुभव को देखो, तो ज्ञान में से ज्ञान स्वभाव का पता चलेगा। वही ज्ञान स्वभावी आत्मा है, वही शुद्ध आत्मा है, वही परमात्मा है, वही सहज स्वरूप है जीव का। और भी कई बातें हैं लेकिन विषयांतर हो जाएगा। कहते हैं कि इसलिए ही मैंने ऐसा संग का योग की निवृत्ति होने के लिए ही सर्व तीर्थंकर आदि ज्ञानियों ने असंगपना ही सर्वोत्कृष्ट कहा है। सर्व तीर्थंकर आदि ज्ञानियों ने असंग दशा में रहना, अपने उपयोग को अंदर में समेट लेना, इसलिए ही उपदेश दिया है। जिनागम, सारा जिनागम इसके लिए ही है। किसके लिए है? क्या कहा जिनागम में? कि तुम असंग हो जाओ, उपयोग को इधर उधर, परिणामों को मत ले जाओ, राग द्वेष का कारण हो जाएगा, विभ्रम का कारण हो जाएगा। असंग दशा में स्वरूप में लीन हो जाओ, और स्वरूप में लीन होना वही असंग दशा है। किसी का संग नहीं करेगा परिणाम, स्वरूप में लीन रह जाएगा, और वही मोक्ष का कारण है। और ऐसा होने के लिए ही सर्व आत्म साधन कहा है। जितने भी धर्म साधन कहे हैं ये स्वरूप में उपयोग लीन होने के लिए कहे हैं, दूसरा कोई हेतु नहीं है। यहां पर कृपालु देव ने तीर्थंकर आदि सर्व ज्ञानियों के कथन का मोटिव क्या है वो बता दिया, कि इसके पीछे कहने का प्रयोजन क्या है, उपयोग को स्वरूप में लीन करो, परिणामों को स्वरूप में लीन करो, असंग हो जाओ, कोई कर्म बंधेगा नहीं, पुराने बंधे हुए निर्जरा हो जाएगी उसी वक्त, नहीं आएंगे नहीं, पुराने की निर्जरा हो जाएगी संचित कर्म के, और आत्मा का मोक्ष हो जाएगा, निष्कर्म दशा को प्राप्त होगा। इसलिए सभी साधन कहे हैं, जितने भी त्याग वैराग संयम यम तप शास्त्र का स्वाध्याय, जो कितना भी कहा है वो इसी के कारण से कहा है, दूसरा कोई कारण से कहा नहीं है। इसलिए ही सर्व तीर्थंकर आदि ज्ञानियों ने असंग पना ही सर्वोत्कृष्ट कहा है, कि जिस कारण से सर्व साधन भी रहे हैं। सर्व जिनागम में कहे हुए वचनों का सार एकमात्र असंगपने में ही समाविष्ट होता है। जिनागम का टोटल मारा कि सर्व जिनागम में कहे हुए कथन, सभी कथन का एकमात्र, कितना दूसरा दूसरा मत लो, एकमात्र असंगपना में ही समाविष्ट होता है। क्योंकि ऐसा होने के लिए ही ये सभी वचन कहने में आए हैं। कहेंगे भूमिका अनुसार, जो अवक्ष खाता है उसको कहेंगे कि ये मांस खाने की चीज नहीं है, सब्जी बहुत तरह की मिलती है, सब्जी तरकारी कितने तरह की मिलती है, इसमें खाने की क्या चीज है, इसकी तो दुर्गंध भी सहन नहीं होती है, तो मुंह में कैसे लगाते हो। तो कोई सब्जी खाता है उसको बोलेंगे कि जमीन कंद मत खाना, और सब्जी बहुत है, आलू प्याज खाना नहीं चाहिए। और जो सब्जी खाएंगे उसको कहेंगे कि उसमें क्या है, और भी बहुत पेट भरने के लिए तो कोई भी चीज हो सकती है। उपदेश तो भूमिका अनुसार आएगा, जीवों के परिणामों की विध विधता बहुत है, मतलब जीव की योग्यता विविध प्रकार की होने से उपदेश भी जिनागम में विविध प्रकार से चला है। इन सब के पीछे क्या आशय है, या सभी कथनों का केंद्र स्थान क्या है, या सभी कथनों का केंद्र स्थान क्या है, या कहने वाले इतने विस्तार से बात करते हैं तो आखिर में वो किस बात को केंद्रित करता है, सेंट्रलाइजेशन कहां करता है, वो देखना चाहिए। इसको वो बात करते हैं कृपालु देवीदत्त कि एक असंपना होने के लिए सभी वचन है, जितने भी कथन है वो स्वरूप में लीन होने के लिए है। वही दृष्टिकोण से उसको पढ़ो, स्वाध्याय करो तो वही दृष्टिकोण को अप्लाई करो, इसमें से असंपना कैसे निकलता है, जो सब दृष्टिकोण नहीं रखे। इसके विस्तार थोड़ा करते हैं दो वचनों में कि एक परमाणु से लेकर के 14 राजलोक की व्यवस्था जिनागम में बताई है। जिनागम में एक परमाणु का भी डिसेक्शन किया है, इसका एनालाइज किया है उसको, कि एक परमाणु में अनंत गुण है और एक एक गुण में अनंत पर्याय होती है, और एक एक पर्याय में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होता है। ये साइंस जिनागम के अलावा कहीं नहीं है। वर्तमान में जिसको हम परमाणु एटम कहते हैं वो तो बहुत से परमाणु का स्कंध है, एक परमाणु तो किसी भी साधन से इंद्रिय ज्ञान में आ सकता नहीं है, विजिबल नहीं है, कितना भी टेलीस्कोप बड़ा हो परमाणु देखा नहीं जाता। फिर भी सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में जो बात आई तो उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि में कही, गणधर आदि आचार्यों ने उसको आगम में रखी, वही परंपरा चालू है। उस परंपरा से कहते हैं कि एक परमाणु से लेकर के 14 ब्रह्मांड का वर्णन जो जिनागम में है उसके पीछे एक ही आशय है कि तुम असंग हो जाओ, संघ का योग छोड़ करके स्वरूप में लीन हो जाओ। ये बात तो रही पदार्थ व्यवस्था की, जगत की व्यवस्था की बात भी। अब कहते हैं कि एक जीव को मेषोन में से लेकर के शैलेशी अवस्था पर्यंत सर्व क्रिया का जो वर्णन आता है जिनागम में, वही असंगता समझाने के लिए ही वर्णन आता है, वर्णन किया है। अब क्रिया की बात करते हैं कि एक आंख का हिलना मेषोन मेष, मेष मैंने बंद होना, उन्मेष मैंने खुलना, जो आंख का पलकारा है टिमकारा है वो पलकारा होता है सहज होता है, ध्यानस्थ अवस्था में वो पलकारा की चंचलता कुछ कम हो जाती है, और पूर्ण ध्यान लगता है तो ये पलकारा बंद हो जाता है, केवली को नहीं होता। और साधक को भी जब ध्यान में रहते हैं नासिकाग्र अवस्था दृष्टि में तो उसको भी कम हो जाता है, तो जिसको प्रयोग होता है उसको मालूम पड़ता है। तो उतने जो क्रिया की सूक्ष्म बात किया, जो बहुत सूक्ष्म क्रिया है, यहां से लेकर के शैलेशी अवस्था, शैलेश मैंने पर्वत, पर्वत स्थिर होता है, हिलता नहीं कभी, पर्वत कभी हिलता, ऐसे स्वरूप में बारहवां गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र को शैलेशी अवस्था कहते हैं, हिलता नहीं फिर आत्मा, फिर स्वरूप से च्युत होता नहीं, उपयोग वहां से खिसकता नहीं है, स्थिर हो जाता है, पूर्ण वितरकता हो जाती है। इतनी बड़ी बात किया है वो भी एक असंता समझाने के अर्थ किया है। मैंने पूरा जिनागम में एक ही आशय है, दूसरा कोई आशय है नहीं, ये बात कही। अब मूल सब्जेक्ट पर आते हैं, पत्र का जो मूल विषय है वो तो अभी शुरू करेंगे। अब तो बैकग्राउंड किया, जो विषय शुरू करना है, सत्संग की स्थापना करना है कि सत्संग का महत्व क्या है मनुष्य के जीवन में, मुमुक्षु के जीवन में, उसकी भूमिका में इतनी लंबी छोड़ी बात किया है, तो उसको स्थापित करना है, एस्टैब्लिश करना है कि इसका महत्व क्या है। इस सर्व भाव से असंगपना होना ये सर्व से दुष्कर में दुष्कर साधन है, ऐसा स्वरूप में लीन हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। उपयोग इतना चंचल है, अन्य मत में तो ऐसा दृष्टांत आता है, खास करके गीता में वो बात आती है, हिंदुओं में वेदांत में जो श्रीमद भगवद गीता है कि गाय के सींग पर वो बिल्कुल गुड़ाई वाला होता है, फ्लैट नहीं होता है, गाय के सिंग और बहुत पॉलिश होता है, स्मूथ होता है, उस पर राय का दाना को रखो, किसको, राय के दाना को वहां स्थिर रखो, रहेगा क्या, अगर कुछ सेकंड के अंश पर्यंत भी रहता है उतना ही मन अगर आत्मा में, यहां कहते हैं कि परमात्मा में रहता है तो उसका मोक्ष हो जाता है। ये लोग ऐसा कहते हैं दृष्टांत समझाने के लिए कि जीव के परिणामों की चंचलता कितनी है, कि जैसे गाय के सिंह पर राय का दाना स्थिर रहता नहीं, वैसे जीव का उपयोग, जीव का परिणाम कहीं भी स्थिर रहता नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तो ये चिंता घूमता रहता। इसलिए स्वरूप में लीन होना ये तो बहुत दुष्कर साधन है, और फिर भी ऐसा हो सकता है, अशक्य नहीं है, किंतु एक शर्त है, एक परिस्थिति है, एक व्यवस्था है इसकी, एक कार्य पद्धति है कि निराश्रयपणे से ऐसा प्राप्त होना अत्यंत दुष्कर है। निराश्रय मैंने अपने आप में, अपने आप कर ले ऐसा नहीं बन सकता, कार्य खुद करता है लेकिन ऐसा सीधा नहीं होता है, घड़ा ऊंधा है, आड़ा होकर के सीधा होता है, कोई कितना भी होशियार हो, दिमाग वाला हो, बुद्धिमान हो, ऊंधे घड़े को आड़ा किए बिना सीधा कर दे, ये वस्तु स्थिति में हो ही नहीं सकता, ऐसे उल्टा पड़ा है जी वो सुलटा हो जाए ऐसा कभी बनता नहीं है। ऐसा विचार करके श्री तीर्थंकर देव ने सत्संग के, सत्संग को उसका आधार कहा है, अगर तुमको स्वरूप में उपयोग ले जाना हो तो एक सत्संग ही आधार है, ऐसा मैं नहीं कहता, तीन लोग के नाथ ऐसा कहते हैं, तीर्थंकर मैंने कौन है, तीन लोग का नाथ ऐसा फरमाते हैं कि अगर तुमको स्वरूप में लीन होना हो तो निराश्रय रूप से अकेले अकेले तुम कितने भी साधना करो, योग करो, कोई भी प्रयोग करो, योग प्रयोग घट योग प्रयोग बहुत किए, वह साधन बार अनंत किए, बिन सदगुरु कोई ना भेद न है, इसका रहस्य इनके पास है, भेद मैंने रहस्य, इसका संग करो, उसको कहते हैं सत्संग, ऐसे ज्ञानी गुरु का संग करना उसको कहते हैं सत्संग, और तीन लोग के नाथ तीर्थंकर परमात्मा की वही आज्ञा है वही आज्ञा को हमें शिरोधार्य करनी है। इस आज्ञा को पैर के नीचे कुचलनी नहीं चाहिए, शिरोधार्य कर लेनी चाहिए। ऐसा विचार करके श्री तीर्थंकर ने सत्संग को उसका आधार किया है कि जिस सत्संग के योग से सहज स्वरूपभूत ऐसा असंपना जीव को उत्पन्न होता है, ऐसा सत्संग का योग होता है, तो जीव को स्वरूप में लीनता ऐसी जो असंपना है, जो अपना सहज असंग स्वरूप है, ऐसी ही दशा है, ऐसी दशा सत्संग के माध्यम से हो सकती है। इसके सिवा किसी को न कभी हुई है न कभी होने वाली भी है। तीर्थंकर देव का सर्वज्ञ का ज्ञान का एक प्रसिद्ध वचन यहाँ पर कृपालु देव ने लिया है। इसलिए सत्संग का महत्व बहुत है, और ये बहुत महत्व होने पर भी और ऐसा सत्संग मिलने पर भी हमने बहुत बार उसकी निष्फलता को प्राप्त किया है, तो कैसे किया है, इसकी सफलता को प्राप्त करें तो कैसे करें, ये विषय इस पत्र के अभी के अंश में आएगा। तो आज यहाँ तक करते हैं।